ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों द्वारा सरकार का कराया गया ध्यानाकर्षण। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग का किया गया निरीक्षण। द्रुत मार्ग की भौतिक प्रगति लगभग 45% तक पहुंच चुकी है, परियोजना द्वारा जानकारी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग द्वारा चितवन के भरतपुर महानगर पालिका के तत्कालीन वरिष्ठ इंजीनियर भरत कुमार आचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला किया गया दायर। और अमेरिका के विभिन्न राज्यों में आई भीषण आंधी के कारण कम से कम 30 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में चलचित्र विधेयक 2081 से संबंधित विधान व्यवस्थापन समिति की रिपोर्ट पेश की गई। समिति की सभापति तुलसा कुमारी दाहाल ने चलचित्र विधेयक 2081 से संबंधित व्यवस्थापन समिति की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की। इसी प्रकार संहिता सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति के सभापति सोनाम गिलजिन शेरपा ने आर्थिक वर्ष 2081-82 की समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश की। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने फागुन 21 गते निर्धारित निर्वाचन को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। बैठक में सांसदों ने निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन कर जनता और राजनीतिक दलों को आतंकित करने की गतिविधियां हो रही है, ये कहते हुए ऐसे कार्यों को रोकने की मांग सरकार से की थी। सांसदों ने गत भाद्र 23 और 24 गति को हुए जनजी प्रदर्शन के दौरान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपदाओं की रक्षा न हो पाने, भौतिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा फरार कैदियों की गिरफ्तारी न होने के विषय में भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 पर बुलाई गई है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में 5 उम्मीदवारों से स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह के निकोपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के लिए सामाजिक संजाल पर हत्यारा टिप्पणी करने के कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये जानकारी आयोग ने दी। आयोग ने श्रम संस्कृति पार्टी के उम्मीदवार हर्क सापांग से प्रचार के दौरान बच्चों का प्रयोग करने और उन्हें प्रचार का टी शर्ट पहनाने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी तरह उम्मीदवार जानुका पाठक से अन्य उम्मीदवार के लिए हत्यारा बलात्कारी जैसे अपमानजनक शब्द प्रयोग करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं नेकपा एमाले के उम्मीदवार महेश बसनेत से बालेन को छावरा कहकर अपमानजनक अभिव्यक्ति देने को लेकर आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को स्वच्छ और मर्यादित बनाने के लिए जिला तहों में काम करने वाले अनुगमन अधिकारियों को विशेष अधिकार वाला छाप प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। आयोग के मार्ग 9 गति के निर्णय के तहत सभी 77 जिलों के सहायक प्रमुख जिलाधिकारियों और प्रमुख कोष नियंत्रकों को चुनाव आचार संहिता अनुगमन अधिकृत की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सड़क पूर्वाधार आदि विकास निर्माण के काम करते समय धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक संपदा पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ये बात कही है। देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाली राष्ट्रीय गौरव की परियोजना काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने ये बात कही। सड़क निर्माण कार्यदल द्वारा आज ललितपुर के खोखना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ रेखांकन और जीरो बिंदु को भी परिवर्तित किया जा सकता है। नेपाली कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सुशासन विकास और व्यावहारिक कार्ययोजना को मुख्य आधार बनाने का निर्णय किया है। आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे ने बताया कि देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए घोषणा पत्र केवल आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे लागू करने के लिए आवश्यक स्रोतों और उपायों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा तथा इसमें विजन 10 को समेटा जाएगा। प्रवक्ता चालीसे ने कहा कि वर्तमान में घोषणा पत्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पार्टी द्वारा जिले जिले से सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं और स्थानीय तह क्षेत्र तथा जिलों से प्राप्त सुझावों को एकीकृत कर राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि निर्वाचन प्रचार प्रसार के दौरान निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पार्टी चुनाव प्रचार को मितव्ययी और मर्यादित बनाएगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने काठमांडू स्थित दो कारागार कार्यालयों और केंद्रीय कारागार अस्पताल में सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, कारागार कार्यालय दिल्ली बाजार तथा केंद्रीय कारागार अस्पताल त्रिपुरेश्वर का स्थलगत निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को बंदी गृहों में मानवाधिकारों की गारंटी के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता न करने का निर्देश दिया। गृहमंत्री अर्याल ने कारागार कार्यालयों के सुधार से संबंधित कार्ययोजना रोडमैप यथाशीघ्र मंत्रालय में प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कारागार प्रशासकों को भी निर्देश किया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने भरतपुर महानगर पालिका के तत्कालीन वरिष्ठ इंजीनियर भरत कुमार आचार्य के विरुद्ध 6,78,91,000 रूपये के बराबर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दायर किया है। आयोग ने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित करने के अभियोग में आज विशेष अदालत काठमांडू में मामला दायर किया है। ये जानकारी प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई है। आयोग ने बताया कि जांच के दौरान आचार्य की आय के स्रोत से अधिक संपत्ति पाए जाने के बाद मामला दायर किया गया है और संपत्ति जब्ती के प्रयोजन से आचार्य की पत्नी लिली सुवेदी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। देश के विभिन्न 9 जिले जंगल में आग के उच्च जोखिम में हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बांके, बर्दिया, चितवन, दांग, कैलाली, कंचनपुर, परसा, सल्यान और सुरखेत जिले वनाग्नि के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। प्राधिकरण ने वनाग्नि के पूर्वानुमान, निगरानी और चेतावनी प्रणाली को प्रभावी बनाने, पूर्व तैयारी तथा वन प्रबंधन के उपाय अपनाकर जंगल की आग के जोखिम को कम करने की कार्ययोजना तय की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में आई भीषण आंधी के कारण कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लाख से अधिक लोग विद्युत सेवा से वंचित हो गए हैं। न्यू मेक्सिको से लेकर मेन राज्य तक फैली इस आंधी ने भारी हिमपात, ठंडी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसमविदों के अनुसार अत्यधिक ठंडी आर्कटिक हवाओं के कारण राहत और पुनर्वास कार्यों में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हिमपात जारी रहने से 22 इंच से अधिक और बोस्टन में 16 इंच से अधिक बर्फ जम चुकी है। आंधी से संबंधित घटनाओं में हाइपोथर्मिया, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हिमपात जन्य हादसों के कारण लोगों की जान गई है। मेन राज्य के बांगोर में उड़ान भरने के दौरान एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार सुबह तक 5,40,000 से अधिक उपभोक्ता बिजली सेवा से वंचित थे। टेनिस, टेक्सास, मिसिसिपी और लुइसियाना राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पूरे देश में 9,000 से अधिक उड़ानें रद्द या प्रभावित हुई हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 गतेको हुने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को भयमुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों द्वारा सरकार का कराया गया ध्यानाकर्षण, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग का किया गया निरीक्षण, द्रुतमार्ग की भौतिक प्रगति लगभग 45% तक पहुंच चुकी है परियोजना द्वारा जानकारी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग द्वारा चितवन के भरतपुर महानगर पालिका के तत्कालीन वरिष्ठ इंजीनियर भरत कुमार आचार्य के विरूद्व भ्रष्टाचार का मामला किया गया दायर, और अमेरिका के विभिन्न राज्यों में आई भीषण आंधी के कारण कम से कम 30 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।